पृष्ठ संख्या 156, फांसीवाद बर्बरता। फांसीवादी हमलों और कब्जों के साथ साथ जघन्यतम कोटि की बर्बरता भी चलती रही। इटली, जर्मनी तथा जापान, इन तीनों धुरी शक्तियों द्वारा स्थापित प्रणाली को फांसीवाद कहा गया है। इनमें हर एक के अपने अपने अलग रूप थे। इन तीनों में से फांसीवाद का जर्मन रूप अर्थात नाजीवाद सबसे अधिक नृशंसतापूर्ण था। नस्ली शुद्धता था। आर्य नस्ल की सर्वोच्चता के सिद्धांत में विश्वास करने वाले नाजी शेष मानवता के अधिकतर हिस्से को हीनतर मानते थे। उनकी दृष्टि में इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं था, और जीना ही था तो गुलामों की तरह। उन्होंने यूरोप को दास शिविर या मृत्यु शिविर में बदल डालने की कोशिश की। इन्हीं देशों की आक्रामक कार्रवाइयों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, जो इतिहास का सबसे अधिक विनाशकारी युद्ध था। युद्ध का अंत फांसीवाद विरोधी गठबंधन की विजय के रूप में हुआ। इस गठबंधन के प्रमुख सदस्य ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ थे। इसके अलावा इनके मित्र देश भी इसमें शामिल थे। यह गठबंधन फांसीवादी शक्तियों की पराजय का मूलाधार और आवश्यक शर्त थी। इसके अतिरिक्त फांसीवादी शक्तियों द्वारा आक्रांत और अधिकृत प्रदेश प्रत्येक देशों में और स्वयं फांसीवादी देशों में भी जन प्रतिरोध के आंदोलन खड़े हुए, जिन्होंने फांसीवादी शक्तियों के प्रभाव में एक महत्वपूर्ण बल्कि कुछ मामलों में तो निर्णायक भूमिका निभाई। नाजी बर्बरता की शुरुआत खुद जर्मनी में हुई थी। देश में यातना शिविर स्थापित किए गए और फांसीवाद विरोधियों तथा यहूदियों को उनके हवाले कर दिया गया। इनमें से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1939 में एक आदेश जारी किया गया कि दीर्घकाल से विक्षिप्त तथा लाइलाज लोगों को खत्म कर दिया जाए। इसके एक साल के अंदर 70,000 लोगों को मार डाला गया। लेकिन असली विनाश लीला सोवियत संघ पर आक्रमण के साथ आरंभ हुई। यूरोप के जिन हिस्सों पर फांसीवादी शक्तियां काबिज हो गई थी, उनकी नागरिक आबादी के एक बड़े हिस्से को या तो खत्म कर दिया गया या उनका उपयोग दास श्रमिकों के रूप में किया गया। यहूदियों को खास तौर से लक्ष्य बनाया गया। केवल 1941 में ही सोवियत संघ में 10 लाख लोग मारे दिए गए। इनमें से आधे यहूदी थे। नाजियों ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी में यातना शिविर स्थापित किए। इनमें पोलैंड के आस्वीसियम, वेल्स के और त्रेवलिंका तथा जर्मनी के डाखाऊ, बेगर्न, वेल्सन और बूखनवाल्ड के यातना शिविर भी शामिल थे। यूरोप भर के लाखों लोग इन शिविरों में लाए गए। इनमें से कुछ तो विशुद्ध रूप से मृत्यु शिविर थे। जुलाई 1941 में यहूदियों की समस्या के अंतिम निपटारे पर एक आदेश जारी किया गया। इसका मतलब था पूर्वी प्रदेशों में यहूदी जाति का समूल नाश। इन शिविरों के संबंध में पूरे तथ्य तब सामने आए जब मित्र सेनाओं ने उन क्षेत्रों को मुक्त कराया जिनमें ये शिविर स्थित थे, तथा युद्ध अपराध के लिए न्यूरंगवर्ग का मुकदमा आरंभ हुआ। आरंभ में लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता था, लेकिन नाजियों को लगा कि यह तरीका खर्चीला और झंझट भरा है। तब मनुष्यों के संहार के लिए उन्होंने जघन्य और नायाब उपाय निकाला। एक कीटाणु नियंत्रक फॉर्म, जो जर्मन कंपनी आईजी फार्वेन की सहायिका थी, एक गैस का उत्पादन करती थी। 1942 से नरसंहार के लिए इसी गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका उपयोग 17 मार्च 1942 को पोलैंड स्थित वेल्स के मृत्यु शिविर में आरंभ हुआ, जहां 15,000 लोगों को एक दिन में मारा जा सकता था। लोगों को तहखानों में ले जाया जाता था और उन्हें बताया जाता था कि यह स्नान घर है। दरअसल ये तहखाने गैस के कक्ष थे, जिनमें से प्रत्येक पर धातु का बना गैस निरोधी दरवाजा लगा रहता था। लोगों को तहखानों में भेजकर गैस के कण अंदर डाल दिए जाते थे। 25 मिनट बाद एग्जास्ट पंपों के जरिए गैस भरी हवा निकल कर धातु का दरवाजा खोल दिया जाता था। मृतकों के सोने के दांत निकालकर और बाल उखाड़कर लाशों के ढेर को भट्टियों में झोंक दिया जाता था। सारी लाशें जलकर राख हो जाती थी। राख को पास ही नदी नालों में बहा दिया जाता था। लोगों को सीधे मार डालने की बजाय नाजी लोग आमतौर पर जर्मन उद्योगपतियों को उनसे भरपूर काम लेने देते थे। इन शिविरों में रहने वाले लोगों को क्रूप, आईजी, फारवेन, सीमेंस आदि औद्योगिक संस्थानों को पट्टे पर दे दिया जाता था। इनमें से कुछ संस्थानों ने तो इन शिविरों के पास ही अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर ली थी। जब रेलगाड़ियां इन लोगों को लेकर पहुंचती तो स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को सीधे मृत्यु शिविर में पहुंचा दिया जाता था और स्वस्थ पुरुषों को काम की जगहों पर ले जाया जाता था। कुछ लोग तो खड़ते खड़ते ही मर जाते थे। जो बीमार पड़ जाते थे उन्हें हर सुबह मृत्यु शिविरों में भेज दिया जाता था। कुछ औद्योगिक संस्थान मनुष्यों के चमड़े से सामान भी बनाते थे। गैस चैम्बरों में खत्म किए जाने के अलावा इन शिविरों के कुछ एक निवासियों का उपयोग नाजी डॉक्टर जीव वैज्ञानिक प्रयोग के लिए भी करते थे। इन लोगों में तरह तरह की बीमारियां पैदा करके उनके टीके निकालने की कोशिश की जाती थी। कुछ लोगों को धीरे धीरे बर्फ में ठंडा करके मारा जाता था और इस क्रम में उनमें जो जीव वैज्ञानिक परिवर्तन आते थे उनका अध्ययन किया जाता था। इन प्रयोगों का वर्णन करते हुए आदमी कांप उठता है। नाजियों द्वारा मारी गई नागरिक आबादी के लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ से ऊपर होने का अनुमान है। कुछ अवसरों पर तो कत्लेआम का तरीका भी अपनाया जाता था। उदाहरण के लिए चेकोस्लोवाकिया ने नाजी गवर्नर हैड्रिक की हत्या के प्रतिरोध में वहां के लेडीज नामक गांव की पूरी आबादी को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा अन्य नृशंसताएं भी बरती जाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा भयावह मृत्यु शिविरों में मचाया गया योजनाबद्ध नरसंहार ही था। अनुमान है कि ऑस्विट शिविर में 40 लाख लोग मारे गए। मारे गए लोगों में से आधे से ज्यादा लोग यहूदी थे। लगभग 60 लाख यहूदी यानी यूरोप में कुल यहूदी आबादी का 75% खत्म कर दिया गया। यहूदियों की इस सामूहिक हत्या को विनाश लीला हॉलोकॉस्ट कहते हैं। दासों की तरह श्रम करने और खत्म कर दिए जाने के लिए शिविरों में लाए जाने वाले लाखों यूरोपियों के अलावा यूरोप के विभिन्न भागों से 75 लाख लोग जर्मन कारखानों में गुलाम मजदूरों के रूप में काम करने के लिए लाए गए थे। इनमें लगभग 20 लाख युद्धबंदी भी शामिल थे। मित्र राष्ट्रों के हवाई हमले और परमाणु बमों का उपयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के हवाई हमलों में कोई 15 लाख नागरिक मारे गए। यद्यपि नागरिक आबादी पर हवाई हमलों की शुरुआत जर्मनी ने की, तथापि मित्र राष्ट्रों की सेनाएं भी इसमें पीछे नहीं रही। अंग्रेजों ने 13 से 14 फरवरी 1945 को जर्मन शहर ड्रेसडेन पर 6.5 लाख से अधिक बम गिराए। इस बमबारी में लगभग 1,35,000 लोग मारे गए, जैसा कि बताया जा चुका है। संयुक्त राज्य द्वारा गिराए गए 2 परमाणु बमों से 3,20,000 जापानी स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए। संयुक्त राज्य द्वारा परमाणु बमों के उपयोग को बहुत लोग घृणित मानते हैं। यह केवल मारे गए लोगों की संख्या के दृष्टि से नहीं, बल्कि स्वयं सामूहिक विनाश के इस नए अस्त्र के प्रयोग के नजरिए से भी। इसके पक्ष में यह दलील दी जाती है कि यदि इन बमों का उपयोग न किया जाता तो जापान के साथ लड़ाई बहुत लंबी खिंचती, जिसमें दोनों ओर के ज्यादा और ज्यादा लोग मारे जाते। लेकिन बहुत से विद्वान इस दलील को स्वीकार नहीं करते। उनके मुताबिक जर्मनी की हार के बाद जापान के लिए लड़ाई को बहुत देर तक चलाना मुमकिन नहीं था। उस समय सोवियत संघ भी जापान के खिलाफ लड़ाई में दाखिल होने वाला था। युद्ध के दौरान परमाणु बम का आविष्कार संयुक्त राज्य में कई देशों के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयासों से किया गया। संयुक्त राज्य तथा अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने इस परियोजना पर इस भय से काम किया था कि इस अस्त्र का आविष्कार औरों से पहले करके जर्मनी इसका उपयोग दुनिया को आतंकित करके उसे नाजी सत्ता का दास बनाने के लिए कर सकता है। लेकिन यूरोप की लड़ाई के खत्म होने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि अन्य किसी भी देश में यह अस्त्र विकसित करने में कोई खास प्रगति नहीं की गई थी। कुछ विद्वानों की राय है कि उन दिनों इन अस्त्रों से लैस एकमात्र शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य ने इनका प्रयोग युद्धोत्तर दुनिया में अपनी सैनिक सर्वोच्चता की धाक जमाने के लिए किया था। सोवियत संघ को, जिसके नागरिक और सैनिक सबसे बड़ी संख्या में हताहत हुए, 1940 में 10,000 पोल सैनिकों को मार कर उन्हें काटिन के क्षेत्र में सामूहिक रूप से दफना देने का दोषी माना जाता है। प्रतिरोध आंदोलन। फांसीवादी देशों ने जिन अन्य देशों पर आक्रमण करके उन पर अधिकार कर लिया था, उन सब में तथा स्वयं फांसीवादी देशों के अंदर भी जन प्रतिरोध के आंदोलनों ने जड़ें जमाई। खास तौर से सोवियत संघ और बाद में संयुक्त राज्य के युद्ध में शामिल होने के उपरांत इन आंदोलनों ने जोर पकड़ा और अपनी गतिविधियां तेज कर दी। फांसीवादी विरोधी गठबंधन कायम होने से फांसीवाद विरोधी शक्तियों के एकजुट होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसा उन देशों में तो हुआ ही जिन पर फांसीवादियों ने कब्जा कर लिया था, साथ ही स्वयं फांसीवादी देशों में भी प्रतिरोध में प्रबलता आई। चेकोस्लोवाकिया। जब नाजी सेना ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश करके ऑस्लोवाकिया में एक कठपुतली सरकार स्थापित की, उस समय उस देश के कई नेता वहां से बच निकले थे। 1940 में एडवर्ड वेनेज के नेतृत्व में चेकोस्लोवाकिया की एक प्रवासी सरकार स्थापित की गई। चेकोस्लोवाक प्रतिरोध आंदोलन में साम्यवादी, समाजवादी, लोकतंत्रवादी तथा अन्य कई दल और गुट शामिल थे। ये सब पूरे युद्ध के दौरान जर्मनी के खिलाफ छापमार लड़ाई चलाते रहे। नाजी गवर्नर की हत्या का उल्लेख हम कर चुके हैं। अगस्त 1944 में ऑस्लोवाकिया में एक विद्रोह संगठित किया गया, जिसमें कठपुतली सरकार के सैनिक भी शामिल हो गए। 4 मई 1945 को प्राहा प्राग में हुए विद्रोह के फलस्वरूप चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन कब्जा पूरी तरह से खत्म हो गया। पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड पर आक्रमण से हुई थी। इस युद्ध में उसे सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। लगभग 65 लाख पोल अर्थात पोलैंड की कुल आबादी के लगभग 20% लोग युद्ध में मारे गए। इनमें से लगभग आधे यहूदी थे। जर्मन आक्रमण के आरंभ से ही वहां एक शक्तिशाली प्रतिरोध आंदोलन उभरने लगा था। पोल लोगों की एक प्रवासी सरकार का गठन किया गया, जिसका नेता जनरल सिको अस्करकी था। पहले इसका मुख्यालय फ्रांस में था और बाद में लंदन ले जाया गया। इस प्रवासी सरकार से पोलों के प्रतिरोध को बराबर मार्गदर्शन मिलता रहा। 1942 में पोलैंड के साम्यवादियों ने अपना अलग प्रतिरोध संगठन खड़ा कर लिया और वे जर्मनियों को खिलाफ कार्रवाई करने लगे। दोनों संगठनों की दृष्टियों पर मामले में एक जैसी नहीं होती थी। पोलैंड की प्रवासी सरकार का आग्रह था कि पोलैंड की युद्ध पूर्व की सीमाओं को स्वीकार किया जाए। इन सीमाओं में कुछ ऐसे प्रदेश भी आ जाते थे जिन पर सोवियत संघ का दावा था। इस बात को लेकर सोवियत संघ और पोलैंड की प्रवासी सरकार के संबंध बिगड़ गए। इसके कुछ दुखद परिणाम हुए। 1 अगस्त 1944 को वर्षा में एक भारी विद्रोह हुआ। अब तक सोवियत सेना पोलैंड के कई हिस्सों को मुक्त करा चुकी थी, लेकिन विद्रोह के संयोजकों ने, जो प्रवासी सरकार के समर्थक थे और स्पष्ट ही चाहते थे कि मुक्त कराया गया वर्षा उसी सरकार को सौंपा जाए, अपनी विद्रोह योजना का तालमेल सोवियत सेना के साथ बैठाने की कोई कोशिश नहीं की। वर्षा की जनता जर्मन सेना के खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन उसे बाहर से कोई मदद नहीं मिली। फलतः इस विद्रोह को निष्ठुरतापूर्वक दबा दिया गया। लगभग 2.5 लाख पोल इस विद्रोह में मौत के घाट उतार दिए गए। यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में फांसीवादी कब्जे और उसके स्थानीय समर्थकों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व साम्यवादी दल ने किया, जिसका नेता जोसीप ब्रोज टीटो था। प्रतिरोध में शामिल विभिन्न समूहों को मिलाकर जन मुक्ति सेना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी खड़ी की गई। इस सेना में शामिल लोगों ने कई विद्रोह संगठित किए। जिनके फलस्वरूप 1944 तक यूगोस्लाविया के कई हिस्से मुक्त हो गए। एक प्रवासी सरकार यूगोस्लाविया की भी थी, लेकिन स्वदेश से उसे कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। अतः देश में टीटो के नेतृत्व में एक सरकार स्थापित की गई। फ्रांस। हम देख चुके हैं कि जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया तो फ्रांसीसी सरकार ने हथियार डाल दिए। जनरल डिगॉल ने स्वतंत्र फ्रांस आंदोलन का गठन किया, जिसका मुख्यालय लंदन में था। जुलाई 1942 में फ्रांसीसी साम्यवादियों की पहल पर एक राष्ट्रीय मोर्चा गठित किया गया, जिससे फ्रांस की सभी फांसीवादी विरोधी ताकतें एक मंच पर आ गई। फ्रांसीसी प्रतिरोध एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया और 1944 के आरंभ में उसने फ्रांस के आंतरिक सैन्य बल फ्रेंच फोर्सेज ऑफ द इंटीरियर का गठन किया, जिसके 5 लाख सदस्य थे। प्रतिरोध मोर्चे के सदस्यों ने जर्मनों तथा उसके फ्रांसीसी सहयोगियों के खिलाफ तोड़फोड़ की, हजारों कार्रवाइयां की। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के फ्रांस में उतरने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खुद अपनी सेना के बल पर फ्रांस के कई हिस्सों को जर्मन कब्जे से मुक्त कराया। जनरल डिगॉल के नेतृत्व में एक कामचलाऊ सरकार भी स्थापित कर ली गई थी, जिसमें साम्यवादियों सहित फ्रांस के कई फांसीवादी विरोधी ताकतों का प्रतिनिधित्व था। 19 और 20 अगस्त 1944 को फांसीवादी प्रतिरोध मोर्चे ने पेरिस में एक विद्रोह का संगठन किया और जर्मन कमांडर ने हिटलर के पेरिस नगर को बर्बाद कर देने के हुक्म की अनसुनी करके प्रतिरोध मोर्चे के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके शीघ्र बाद डिगॉल के नेतृत्व में कामचलाऊ सरकार ने पेरिस में प्रवेश किया। सोवियत संघ। यदि युद्ध में मारे गए लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक नुकसान सोवियत संघ को उठाना पड़ा। अनुमान है जर्मन सेना द्वारा बंदी बनाए गए और मार डाले गए लाल सेना के लोगों की संख्या 40 लाख थी। इसके अलावा नागरिक आबादी के 60 लाख लोगों को जर्मनों ने मौत के घाट उतार दिया। इनमें से 7.5 लाख यहूदी थे। सोवियत अनुमान के अनुसार युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या लगभग 2 करोड़ थी, यानी कुल आबादी का 10%। कुछ पश्चात्य इतिहासकारों का विचार है कि स्टालिन के शासन के खिलाफ सोवियत संघ में व्यापक असंतोष था और कम से कम देश के कुछ हिस्से में उसके शासन से मुक्ति पाने की आशा से जर्मन हमले का स्वागत किया गया होता। लेकिन युद्ध के आरंभिक दौर में ही सोवियत जनता पर जर्मन सेना ने जो कहर बरपा किया, उससे उन्हें इस बात का भान हो गया होगा कि हिटलर उनकी क्या दुर्दशा करने वाला था। इस तरह जर्मन नृशंसता ने सोवियत जनों को एकजुट कर दिया और उन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी प्रतिरोध मोर्चा खड़ा किया। जर्मन सेना के कब्जे में जाने वाले सोवियत संघ के हर हिस्से में बड़े पैमाने पर छापमार लड़ाइयों का सिलसिला चल पड़ा। सोवियत सेना के साथ पूरा तालमेल बैठाकर चलाई जाने वाली छापमार लड़ाइयों ने सोवियत संघ में जर्मनों की घोर पराजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सोवियत प्रदेशों में जर्मनों के खिलाफ छापमार लड़ाइयों में हिस्सा लिया। यूनान। यूनान पर 1940 में इतालवियों ने आक्रमण किया था, जिसमें उन्हें गहरी शिकस्त मिली थी। इसके बाद उस देश पर जर्मन सेना ने कब्जा कर लिया था। यूनानी राजा और यूनानी सरकार ने केरो में शरण ली। जर्मनी के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व यूनानी साम्यवादियों ने किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और एक राष्ट्रीय जनमुक्ति सेना, नेशनल पॉपुलर लिबरेशन आर्मी खड़ी कर ली। विभिन्न फांसीवादी समूहों को एकजुट किया गया और यूनान के कई हिस्सों को मुक्त करा लिया गया। लेकिन शीघ्र ही प्रवासी यूनानी सरकार और प्रतिरोध मोर्चे के बीच अनबन हो गई। 1944 के उत्तरार्ध में इस मोर्चे द्वारा फांसीवादियों से यूनान को मुक्त करा लेने के बाद प्रवासी सरकार ने ब्रिटिश सेना की सहायता से वहां सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की। फलतः वहां गृह युद्ध आरंभ हो गया। जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी कुछ समय तक चलता रहा। इटली, फांसीवाद ने पहली विजय इटली में प्राप्त की थी, लेकिन उसे फांसीवादी चुंगल से आजाद कराने में प्रमुख भूमिका वहां के प्रतिरोध आंदोलन ने निभाई। इतालवी फांसीवादियों को क्या यूरोप और क्या अफ्रीका, सर्वत्र अपने सैनिक अभियानों में पराजय का मुंह देखना पड़ा था। 1942 में इटली के साम्यवादी तथा समाजवादी फांसीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो गए थे। मुसोलिनी के सत्ताच्युत किए जाने और उत्तरी इटली पर जर्मनी के काबिज हो जाने के बाद देश के इस हिस्से में एक जबरदस्त प्रतिरोध आंदोलन उभरा। इतालवी प्रतिरोध में पामीरो तोलियाती के नेतृत्व में वहां के साम्यवादियों की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। जर्मन कब्जे और इतालवी फांसीवाद पर अंतिम प्रहार अप्रैल 1945 में इतालवी प्रतिरोध मोर्चे ने किया। उसने जेनोवा, मिलान और त्यूरीन को मुक्त करा लिया। मुसोलिनी को गिरफ्तार करके उसे गोली मार दी गई। जर्मनी, युद्ध आरंभ होने के बहुत पहले ही जर्मनी में समस्त विरोधों और असहमतियों का मुंह बेरहमी के साथ बंद कर दिया गया था। जो नाजी विरोधी जर्मन बच निकले थे, उन्होंने अपना प्रचार आरंभ रखा और नाजी शासन तथा उसके आक्रामक मंसूबों के खिलाफ विश्व लोकमत को लामबंद करने में सहायता दी। जर्मनी के मूर्धन्य साहित्यकारों की रचनाओं की नाजियों ने होलियां जलाई तथा जर्मन साम्यवादियों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। नाजीवाद विरोधी जर्मन लोग स्पेन के गृह युद्ध में गणतंत्र की ओर से लड़े थे। युद्ध के दौरान नाजीवाद विरोधी जर्मनों की छोटी मोटी मंडलियों ने जर्मनी के अंदर कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाइयां करने में कामयाबी हासिल की। स्वदेश छोड़कर भागे जर्मनों तथा कुछ जर्मन युद्ध बंदियों द्वारा स्थापित स्वतंत्र जर्मन राष्ट्रीय समिति, फ्री जर्मन नेशनल कमिटी ने जर्मनी के अंदर और बाहर नाजी विरोधी प्रचार अभियान चलाया। 1944 में कुछ जर्मन सेनाधिकारियों ने, जिन्हें यह विश्वास हो गया कि हिटलर देश को विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है, उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 20 जुलाई 1944 को कर्नल क्लास सेंक फॉन ऑस्टोफन वर्ग ने हिटलर के रास्टेन वर्ग स्थित उस मुख्यालय में एक बम लगा दिया जहां से वह पूर्वी मोर्चे के युद्ध का संचालन कर रहा था। बम तो फटा, लेकिन हिटलर वहां बैठता था, बम उसके काफी पास नहीं लगाया गया था। इस प्रकार हिटलर को मामूली चोट आई और वह बच गया। ऑस्टोफन वर्ग तथा अन्य षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करके गोली से उड़ा दिया गया। इस षड्यंत्र में जर्मन सेना का परम यशस्वी सेनापति रोमेल भी शामिल था, जिसने उत्तर अफ्रीका में जर्मन सेना का नेतृत्व किया था। उसे गोली मारने की बजाय आत्महत्या करके अपना अंत कर लेने की इजाज़त दी गई।